मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मित्रों मैं स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन साथी का नाम है मितेश कुमार राजेश भाई पडालिया। आप गोंदल राजकोट गुजरात से हैं। तो मितेश आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों से शुरुआत में कहना चाहूंगा और वो ये खासकर सिविल सर्विस के प्रिपरेशन को लेकर। देखिए आपके पास सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के कई रास्ते हैं, कई तरीके हैं। जो भी आप डेली न्यूज में सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, आपको इसका कलेक्शन मंथली रूप में किसी मैगजीन में भी मिल जाता है। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की काफी पत्रिकाएं निकलती हैं और उन पत्रिकाओं में कोशिश होती है कि महीने भर की सारी चीजें इकट्ठी स्टूडेंट को पढ़ने को मिल जाए और मिल भी जाती हैं। आपको नोट्स भी मिल जाते हैं तो चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो संकट अब जो सिविल सर्विस का है, या संकट न कहूं मैं कहना चाहूंगा कि जो चुनौती है, वो ये है मित्रों कि अब जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन है वो अब इग्नियस रॉक्स की तरह नहीं है, आग्नेय चट्टानों की तरह नहीं है। ये बेसिकली अब एक परतदार चट्टान की तरह हो गई है। परतदार चट्टान कहने का मतलब है कि लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लेयर्स ऑफ नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। आप देखते हैं कि कोई एक घटना होती है और वो लगातार आगे बढ़ती चली जाती है, बदलती चली जाती है, मुड़ती चली जाती है। इस तरह से घटना लगातार एक प्रोग्रेसिव स्टेज में रहती है, प्रोग्रेसिंग स्टेज में चलती जाती है। अब आपके साथ जो चैलेंज है, मैं सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के संदर्भ में कहना चाहूंगा, वो ये है कि कैसे आप इसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करके चल सके। यानी कि रोज जो बदलाव हो रहे हैं उन बदलाव को आइडेंटिफाई करके और अपने दिमाग में जगह देते हुए चले। जब आप मैगजीन पढ़ते हैं तो होता यह है कि 30-35 दिनों की जो पिछली घटनाएं हैं उनका आपको एक जगह संकलन मिल जाता है। संकलन मिलने के बाद आप उसे पढ़ लेते हैं तो नो डाउट उसका एक बहुत बड़ा फायदा ये तो है कि आपको इधर उधर बिखरी हुई चीजें एक ही जगह संकलित रूप में मिल जाती हैं। लेकिन उसकी एक सीमा भी है मित्रों। उसकी सीमा यह है कि अब आपको एक साथ वे चीजें पढ़नी हैं और अपने दिमाग में रखनी है और ढेर सारी चीजें हैं। तो अब आखिर में जो व्यक्ति का मस्तिष्क है वो किस सीमा तक इन चीजों को एक्सेप्ट करके और उनका उपयोग कर सकता है, ये एक अलग बात है। हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट इस मायने में असाधारण किस्म के हों और वो इस तरीके से सफलताएं हासिल भी कर लेते हों, कर लेंगे, दोनों ही चीजें हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है मित्रों कि जब आप डेली बेसिस पर चीजों से जुड़े रहते हैं तो उसका जो इंपॉर्टेंस है, उसकी जो उपयोगिता है, और सच पूछिए तो सिविल सर्विस में वो आपको जितनी मदद कर सकता है उतनी चीजें इकट्ठे पढ़ने से मददगार नहीं हो पाती हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए जम्मू कश्मीर की समस्या को अभी आप देख रहे हैं। दो तरीके हैं, आपको मैगजीन में पक्का है कि जम्मू कश्मीर की समस्या पर मैगजीन में आर्टिकल्स मिलेंगे। अब वो आर्टिकल्स सीधे दो भागों में विभाजित होंगे। एक तो जम्मू कश्मीर का जो इतिहास रहा है, मतलब आजादी में जब भारत में विलय से लेकर के और अभी तक का कैसे वहां समस्याएं शुरू हुई, वो आपको पूरी बैकग्राउंड मिल जाएगी। नो डाउट वो आपको न्यूज में नहीं मिलेगी, न्यूज पेपर में भी नहीं मिलेगी, वह भी जानना आपके लिए जरूरी है। इसके बाद फिर जिस दिन वो मैगजीन छप रही थी वहां तक का डेवलपमेंट मिल जाएगा और वो इकट्ठा मिल जाएगा। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका यह है कि आप रोज न्यूज में उससे सुनते चले जा रहे हैं और एक तरीके से आपकी जो अपनी मानसिक यात्रा है वो जम्मू कश्मीर की जो समस्या की यात्रा है उसके पैरेलल चल रही है। दोनों चीजें समानांतर रूप से आगे बढ़ रही हैं। तो ये जो समानांतर रूप से आगे बढ़ने की जो टेक्निक है ये आपके अंदर एक अलग किस्म की अंतर्दृष्टि पैदा कर देती है, जिसे मैं पावर ऑफ एनालिसिस कहना चाहूंगा। और समीक्षात्मक दृष्टि आती ही इससे है क्योंकि चीजें बदल रही है ना। जैसे अभी आपने कल की न्यूज में सुना कि जम्मू कश्मीर में अब चीजें थोड़ी सी ईज हुई हैं, थोड़ी सी सरल हुई है, आसान हुई, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से प्रशंसा भी की है और राहत की सांस ली है। आपने सुना कि कर्फ्यू में एक दो जगह को छोड़ करके बाकी ढील दे दी गई है, उठा लिया गया है, मतलब स्थिति नॉर्मल सी सामान्य होने की ओर काफी तेजी से बढ़ रही है। दूसरी बात आपने यही न्यूज में सुनी कि अब हमारे जो गृहमंत्री जी हैं अभी 4 तारीख को एक सर्वदलीय शिष्टमंडल लेकर कश्मीर की यात्रा पर जाएंगे और वहां लोगों से बातचीत करेंगे। एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है। फिर आपने इससे पहले यह भी आपने देखा था कि कल या कल की न्यूज में आपने सुना था कि जो मन की बात जो थी प्रधानमंत्री जी की, उसमें उन्होंने कश्मीर के जो की जो आवाम है उसको एड्रेस किया था और उन्होंने कहा था कि जिन्हों जो बच्चों के हाथ में आज पत्थर थमा रहे हैं, हथियार थमा रहे हैं, उनसे बच्चे कभी न कभी जवाब मांगेंगे और वहां की जो समस्या है उसका हल केवल बातचीत, सम्मान, करुणा, दया, ममता से ही हो सकता है, इस आतंक से और लड़ाई हिंसा से नहीं हो सकता। ये भी आपने सुना। इससे पहले आप सुन चुके हैं कि वहां की मुख्यमंत्री मुफ्ती महबूबा आई यहां और प्रधानमंत्री से मिलकर के गई। उससे पहले आपने सुना कि हमारे गृहमंत्री जम्मू कश्मीर गए और वहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की। तो आप देख रहे हैं ये पूरे के पूरे घटनाक्रम को आप न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और वहां से डेवलप होते होते चीजें, मतलब गृहमंत्री जी की हमारे जम्मू कश्मीर की यात्रा से होते होते अब हम यहां तक पहुंच गए हैं कि हमारे गृहमंत्री सर्वदलीय शिष्टमंडल लेकर वहां जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे संकेत है। अब ये जो सर्वदलीय शिष्टमंडल है ये क्या है मित्र? यही डेमोक्रेसी है। एक तो इसमें सभी दलों के लोग होंगे। तो सर्वदलीय जब शिष्टमंडल हो जाता है तो उसका मतलब है कि पूरा नेशन एक मत से आपसे बात कर रहा है। जो बात की जा रही है ये किसी कोई सरकार बात नहीं कर रही है या कोई एक राजनीतिक पार्टी बात नहीं कर रही है, बल्कि पूरा राष्ट्र आपसे बात कर रहा है। तो इसकी इंपॉर्टेंस और यूं कह लीजिए कि इसका वजन बहुत बढ़ जाता है। तो यहां तक स्थिति पहुंची। तो ये चीजें आपके दिमाग में तभी सिलसिलेवार बैठेंगी जब आप लगातार न्यूज से जुड़े हुए हों, चाहे फिर वो आपका रेडियो न्यूज हो, चाहे वो आपका दूरदर्शन का न्यूज हो, चाहे न्यूज पेपर्स हो, चाहे डेली ऑडियो गाइडेंस हो, चाहे फिर ये सभी हो। अब आप इस आपको ये बताने की जरूरत नहीं रह गई है कि आपके सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में चाहे वो प्री हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, सबसे बड़ा रोल करंट अफेयर्स का हो गया है और करंट अफेयर्स में सबसे बड़ा रोल डेली न्यूज, डेली न्यूज़पेपर्स, इन सब का है। इसका मतलब इसका कोई विकल्प नहीं है एग्जैक्ट उसी स्ट्रेंथ के साथ। बाकी तो तैयारी करने वाले स्टूडेंट अपने अपने ढंग से तैयारी करते ही है। मित्रों, ये जम्मू कश्मीर के न्यूज के साथ ही मैं एक बात थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा कि उसी में आपने सुना कि जो पैलेट गन के प्रयोग के ऊपर जो एक समिति बनाई गई थी उसने अब अपनी रिपोर्ट दे दी है। अभी खासकर जम्मू कश्मीर में जब स्थितियां खराब हुई थी तो पैलेट गन के इस्तेमाल से काफी लोगों को चोट पहुंची, तो उस पर एक विरोध जताया गया था। तो अब सरकार ने फिर समिति बना दी थी कि अब देखते हैं इसका क्या विकल्प हो सकता है। तो अब वो रिपोर्ट आ गई है, अब देखते हैं अखबारों में आएगा कि रिपोर्ट क्या कह रही है और फिर सरकार क्या निर्णय लेती है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अमहत्वपूर्ण भी नहीं लग रहा है। लग रहा है कि थोड़ा सा विशेष ध्यान दे दिया जाना चाहिए। मित्रों, जो दूसरी खबर थी वो भारत एवं म्यांमार को लेकर के थी। मैंने आपसे उसी समय आपको सतर्क किया था जब हमारे विदेश मंत्री म्यांमार की यात्रा पर जा रही थी। भारत का पड़ोसी राष्ट्र है, बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्र है। भारत जिस तरह से अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बढ़ा रहा है उसमें नो डाउट कि म्यांमार में इसलिए उसका अर्थ अभी बढ़ गया क्योंकि यूं मान करके चलिए कि सही मायने में जो डेमोक्रेसी है, जिस तरह की भी डेमोक्रेसी आई हो, पहली बार वहां स्थापित हुई है। तो इसलिए म्यांमार से भारत के संबंध अच्छे होने की तरफ धीरे धीरे बढ़ने चाहिए और भारत उस तरह से इंपॉर्टेंस भी देगा। न्यूज में तो देखिए कोई खास ऐसा नहीं था, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में, सुरक्षा के लिए, नवीनीकरण योजना के लिए दोनों देशों के बीच संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट इस न्यूज में लगी वो ये कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट है कि जो म्यांमार है वो भारत के लिए, जो साउथ एशिया है उसका एक कॉरिडोर है, मतलब उसका एक द्वार है, यह बात उन्होंने कही। मतलब म्यांमार हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साउथ एशिया का जो गेट खुलेगा जो वो म्यांमार के थ्रू खुलेगा, मतलब एक इंपॉर्टेंस बताने की बात है। तो मित्रों इसको अब आप कैसे तैयार करेंगे, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन ही पूछ लिया गया तो आप कैसे तैयार करेंगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। मैं अपनी तरफ से अभी कुछ नहीं कह रहा हूं इसके बारे में और आपको सलाह दे रहा हूं, एक तकलीफ दे रहा हूं कह लीजिए, और वो ये कि आप थोड़ा सा नक्शा खोलें, एटलस खोलें, नक्शे के सामने खड़े हों और देखें कि म्यांमार कहां पर है और भारत अगर साउथ एशिया की तरफ जाना चाहेगा तो वो कैसे जाएगा, उसमें म्यांमार का क्या रोल होगा। एटलीस्ट कम से कम इसको आप जानने की कोशिश कीजिए मैप के माध्यम से। मैं मित्रों जानबूझ करके नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं जानबूझ करके बताऊंगा तो बहुत से स्टूडेंट को ये भ्रम हो जाएगा कि वो जान गए हैं, अब उनको पता है। ये बात अलग है कि जिस तरीके से जानना चाहिए उस तरह से वो जाने नहीं है। और सच पूछे तो अब चीजों को इस तरीके से बताने में मुझे थोड़ा सा ना एक संकोच भी होने लगा है, भय भी होने लगा है, इसलिए कि मैंने जो कॉमन सेंस के बारे में आप लोगों से बात की थी खासकर बेसिन प्राधिकरण को लेकर के, और मैंने केवल अनुमान लगाने के तरीके उलट पुलट करके बताए थे, और मैं देख रहा हूं कि मेरे पास मेल में अब उन सारे अनुमानों को तथ्य मान लिया गया है कि जैसे मैं तथ्य बता रहा हूं। अगर मुझे तथ्य मालूम भी होते तो भी मैं तथ्य नहीं बताता क्योंकि मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। तो उसको बहुत से स्टूडेंट ने समझ लिया कि मैं तथ्य ही बता रहा हूं, तो अब उसके करेक्शंस मेरे पास ईमेल के जरिए आ रहे हैं। तो सच पूछे तो इस तरीके से ना बताने में थोड़ा सा संकट भी पैदा होता, संकट खड़ा हो जाता है कि कहीं ऐसा नहीं कि मैं स्टूडेंट का नुकसान कर रहा हूं, पता नहीं मैं अपनी बात को कितने सही तरीके से उन तक पहुंचा रहा हूं, या मैं तो पहुंचा रहा हूं तो पता नहीं उन तक बात कितनी सही तरीके से पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। तो ये सारे के सारे बड़े संकट होते हैं दोस्तों इस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। खैर तो मित्रों इस एंगल से आप भारत और म्यांमार को थोड़ा सा देखने और समझने की कोशिश कीजिए, और मुझे लगता है कि म्यांमार को लेकर के जरूर एक दो आर्टिकल्स आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। जो दोस्तों जैसा कि मैं अभी कह रहा था आप लोगों से कि डेली न्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए कल जब आपने रेडियो न्यूज सुनी होगी या चैनल में भी अगर आपने न्यूज सुना हो तो एक बार फिर से आपने सभी उन खिलाड़ियों के नाम सुने जिन्हें खेल रत्न दिया गया है, उनके वाक्य भी सुने जिनको जो ओलंपिक से मेडल लेकर के आए हैं। जैसे अखबारों के माध्यम से आप जीतू राय के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जान रहे होंगे, मान लीजिए चलिए अब पीवी सिंधु और जो दीपा कर्माकर भी काफी मतलब एक चर्चित नाम हो गई हैं, और साक्षी मलिक, तीन नाम काफी चर्चित हो गए हैं, तो इनके बारे में आपको मालूम होगा, ये भी मालूम हो गया कि किन खेल से संबंधित है। लेकिन हो सकता है जीतू राय के बारे में थोड़ा सा मालूम ना हो, कम मालूम हो, या ये ना मालूम हो कि किस स्टेट से हैं। तो अगर आपने डीडी न्यूज में देखा होगा तो उनको खेल रत्न सम्मान दिया जा रहा है, तो उसको लेते हुए फिर उनकी भाषा, उनका रूप रंग देख करके आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस स्टेट के रहे होंगे, इतना सेंस तो आ जाएगा ना, और इतना सेंस आ जाएगा तो फिर ये कॉमन सेंस में कन्वर्ट होकर के आपके प्री की जरूरत को पूरा कर देगा। अब इन चीजों को आपको रटने की जरूरत नहीं है, और जब हम सीधे मैगजीन से किसी चीज को रटते देखते हैं तो दोस्तों दिमाग से जल्दी निकल भी जाती है, लेकिन जो हमारी लगातार जिन चीजों को हम सुनने के माध्यम से दोहराते रहते हैं, अनायास ही चीजें दोहराई जाती हैं, वो फिर आसानी से हमारे दिमाग से निकलती नहीं, और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। मित्रों अब एक आखिरी जो न्यूज थी न्यूज़पेपर की, वो मैं उसको थोड़ा सा एनालाइज करना चाहूंगा। आपने न्यूज सुनी कि आर्थिक मतलब रिजर्व बैंक ने ये स्टेटमेंट दिया है कि भारत में अब आर्थिक विकास में वृद्धि दर के संकेत मिल रहे हैं, मतलब आर्थिक विकास में वृद्धि हो रही है ऐसा लग रहा है। दूसरा स्टेटमेंट ये भी था कि अगर मुद्रा स्फीति की दर नियंत्रित हो जाएगी तो फिर ब्याज दर के बारे में सोचा जा सकता है, कम किया जा सकता है, जिसको रेपो दर और रिवर्स रेपो दर के नाम से जाना जाता है। खैर मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मित्रों यहां मैं फिर से आपको माफी चाहूंगा इस बात के लिए कि मैं एक होमवर्क सा दे रहा हूं। होमवर्क यह है कि रिजर्व बैंक ने अगर कहा है कि आर्थिक विकास में वृद्धि दर के संकेत मिल रहे हैं तो क्या आप इस पर 150-200 शब्दों का एक उत्तर तैयार कर सकते हैं, नॉट लेस देन 150 वर्ड्स एंड मोर देन 200 वर्ड्स, इन बिटवीन 150 एंड 200 वर्ड्स, कि कैसे विकास दर में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। मान लीजिए कि आज आपको एग्जाम देना है और आज आपको इसका उत्तर लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? और इसमें यूज कीजिए अपने कॉमन सेंस का। मैं आपको फैक्चुअल लिखने की बात नहीं कर रहा हूं, कंटेंट बेस्ड चीजें लिखने की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको मालूम है तो आप लिखिए, मैं उसको प्रतिबंधित भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन मान लीजिए कि आपको कंटेंट मालूम ही नहीं है, मान लीजिए मालूम नहीं है और उत्तर आपको लिखना है, उत्तर तो लिखना ही चाहिए, तो फिर आप कैसे लिखेंगे? दोस्तों जरा इस पर काम करके देखिए, आपको मजा आएगा, है ना। इस तरीके से आप अपनी जो दिमाग की जो बनी बनाई जो धारणा है या जो जड़ता है उसको हिलाइए थोड़ा सा, तब आप देखेंगे कि सिविल सर्विस के लायक जो दिमागी मैदान जो है वो तैयार होगा, जिसको जमीन कहते हैं कि अब बुआई के लिए तैयार है। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं जो अभी आपके प्री में आया था, अभी अगस्त के प्री में, ये मैं सेट वन का क्वेश्चन नंबर ये फोर है, जो नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर थ्री है, इकोनॉमिक से रिलेटेड है। अगर आपके पास सेट बी हो तो क्वेश्चन नंबर 26 है, अगर सेट सी है तो क्वेश्चन नंबर 51 है, और अगर सेट डी है तो क्वेश्चन नंबर 76 है। ये उनके क्वेश्चन नंबर्स हैं। ए में थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, आप देखिए कि उसमें क्या दिया हुआ है। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है, घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाइयां की जा सकती है, मतलब कौन सी कार्रवाई सरकार करे कि वो घाटे के बजट को अपना कम कर सके, राइट। अब आप देखिए कि उसमें चार कार्रवाइयां दी हुई हैं, फोर स्टेप्स दिए हुए हैं, उसके बाद फिर कूट दिया हुआ है। मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। मैं अगर कॉमन सेंस के तहत आपको समझाना चाहूंगा ना, तो उसमें आप अर्थशास्त्र के सिद्धांत मत ले आइएगा, है ना। कॉमन सेंस का मतलब ही, आपको अगर सिद्धांत मालूम है, तथ्य मालूम है, तो फिर तो कॉमन सेंस है ही नहीं ना, फिर तो खत्म हो गई बात। कॉमन सेंस का मतलब यह कि हमको मालूम नहीं है, अब तो हम अंदाजा लगा रहे, तो आप अंदाजा गलत तरीके से भी लगाइए ना, कोई बात नहीं, अंदाजा सही होना चाहिए, सही के करीब होना चाहिए। रास्ता भले गलत हो, मेरी समझ गलत है तो मैं गलत तरीके से अंदाजा लगा रहा हूं, लेकिन अंदाजा सही लगा रहा हूं। इंपॉर्टेंट अंदाजा का सही होना है, तरीके का सही या गलत होना नहीं है। और कॉमन सेंस तक पहुंचने के लिए हर व्यक्ति अलग अलग चीजों को उठाता है, अलग अलग तरीके से वहां तक पहुंचता है। अब आप देखिए कि जो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं वो क्या है। पहला विकल्प है राजस्व व्यय को घटाना, यानी कि सरकार जो खर्च करती है उसको घटा दे। अब उसका आपके घर का बजट घाटे का है, मतलब हर महीने आपको आपका मान लीजिए 1000 रुपए आपकी सैलरी है और 1200 रुपए आपका खर्च हो जाता है, यही हो गया आपका घाटा, राजस्व घाटा यही हुआ, मतलब सरकार का वो बजट है, सरकार का घरेलू बजट है, उसी तरह से हमारा घरेलू बजट है। अब आपका 1200 रुपए खर्च हो रहा है तो आपको 200 रुपए आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं, यही मतलब हुआ। तो अब इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो पहली बात है कि राजस्व व्यय को घटा दीजिए, आप अपने खर्चे को घटा दीजिए। आप अगर 100 रुपए भी घटा देंगे, 50 रुपए भी घटा देंगे, तो 200 रुपए का घाटा घटकर 100-150 रुपए का तो रह जाएगा ना। एक उपाय तो यही है कि हम अपने खर्चे को कम कर दें, तो ठीक है, ये उपाय हो सकता है। दूसरा दिया, नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना। अब अगर सरकार कल्याणकारी योजनाएं नए नए प्रारंभ कर दे कि सबको हम फ्री अनाज देंगे और फ्री कपड़ा देंगे और फ्री फलाना देंगे, तो उसके लिए फिर पैसा कहां से लाएगी? जैसे आपने 1000 रुपए की तो आपको कमाई है और आपने फैसला कर लिया कि अब मैं 50 रुपए मंदिर में दान दिया करूंगा हर महीने, कल्याणकारी योजना है ना, या किसी भिखारी को दूंगा या किसी अनाथालय में 100 रुपए महीने दिया करूंगा, तो आपका 1200 रुपए से बजट घटकर घाटा घटकर के बढ़कर के 1300 हो गया ना, तो आप कैसे कल्याणकारी काम करेंगे? तो ये तो नहीं हो सकता, फिर तो आपका घाटा बढ़ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, इसको आप निकाल देंगे। फिर है सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना। सब्सिडी में क्या करते हैं? सब्सिडी में सरकारी के खजाने से, सरकार के खजाने से पैसा लिया जाता है, दिया जाता है। सब्सिडी क्या है? सब्सिडी का मतलब है कि सरकार एक यूरिया के कारखाने से मान लीजिए 1000 रुपए में यूरिया खरीदती है और किसान को 500 रुपए में दे देती है, तो सरकार को 500 रुपए का नुकसान होता है, तो सरकार के खजाने से पैसा जा रहा है, सरकार को नुकसान हो रहा है, सरकार के खजाने से पैसा जा रहा है, घाटा बढ़ रहा है। तो हां, अगर इसको युक्तिसंगत बना दिया जाए, यानी कि 500 रुपए की जगह 400 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए, जितना भी लॉजिकल बना दिया जाए, या जो फालतू के लोगों के पास जा रहा है उसको रोक दिया जाए, तो मान लीजिए कि 1,00,000 करोड़ रुपए सरकार सब्सिडी में देती है, युक्ति संगत बनाने के बाद वो 1,00,000 करोड़ घट करके 50,000 करोड़ हो जाएगा, तो 50,000 करोड़ का घाटा कम हो जाएगा, बच जाएगा। हाँ, ये उत्तर हो सकता है, राइट। अब आयात शुल्क को कम करना, इंपोर्ट आप टैक्स घटा देंगे, इंपोर्ट टैक्स घटा देंगे तो क्या होगा भाई, इंपोर्ट से तो जो सरकार को टैक्स मिल रहा है वो तो आपकी कमाई हो रही है ना, टैक्स से सरकार की कमाई हो रही है। अब आपने इंपोर्ट शुल्क घटा दिया तो आपकी टैक्स की कमाई कम हो गई, तो ये तो आपका पता लगा कि 1,000 रुपए की जो महीने की आमदनी थी वो घटकर 900 रुपए हो गई, और खर्चा आपका 1,200 है, तो घाटा आपका 300 रुपए बढ़ गया, हो गया, बढ़ गया। तो आयात शुल्क को कम कैसे करेंगे, और फिर आयात शुल्क को तो कम करने के दूसरे बड़े वो गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि आयात शुल्क कम कर देंगे विदेशी सामान सस्ता हो जाएगा, तो पता लगा भारत का सामान नहीं बिक रहा है, और भारत का सामान बिकता तो उस पर गवर्नमेंट को एक्साइज टैक्स वगैरह मिलता है, और ज्यादा खजाने से पैसा निकल गया। तो ये उल्टा काम सरकार कर ही नहीं सकती। तो इस तरीके से जरा सा इसको कॉमन सेंस से अपने घरेलू बजट के हिसाब से सोचेंगे तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन दिया है कि प्लीज उसके सही उत्तर को लिखने की कोशिश कीजिए कि आर्थिक विकास में वृद्धि दर के संकेत मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये AIR न्यूज के बारे में थे। न्यूज़पेपर पर में से मैं आज आपको काफी क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। इसमें दो सूचनाएं मैं खास कर देना चाहूंगा दोस्तों। एक हिंदुस्तान का एडिटोरियल कमेंट है कल के हिंदी का, कि जिसमें इन्होंने ड्रैगन फ्लाई 44 के बारे में बात की है। ये जो ड्रैगन फ्लाई 44 है, ये बेसिकली आकाश गंगा है, जिसके बारे में अभी अभी पता लगा है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ये इसके यहां लगभग 100% 99.99% डार्क मैटर है, ये कहा जा रहा है कि डार्क मैटर। और आप जानते हैं कि डार्क मैटर के बारे में अभी तक कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सका है कि यह है क्या, क्योंकि यह न तो इसके जो कण होते हैं न तो ऊर्जा को सोखते हैं, न ऊर्जा पैदा करते हैं, न ऊर्जा को रोकते हैं, तो अब कैसे पता लगे कि यह डार्क मैटर है क्या। और वैसे भी माना जाता है कि हमारी पूरी दुनिया में लगभग 27% डार्क मैटर ही है। तो डार्क मैटर और ये ड्रैगन फ्लाई 44, ये आपको मालूम होना चाहिए। और मित्रों, इसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं एक एडिटोरियल कमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें ये बताया गया कि सरकार अब एक चुनावी सुधार के तहत एक ऐसा निर्णय लेने, मतलब उसने फैसला कर लिया है कि जैसे जब चुनाव होते हैं ना, तो आप देखते हैं कि जो जो भी बूथ हैं वहां किस पार्टी को कितने वोट मिले बूथ वाइज बता दिया जाता है, तो ये नहीं बताया जाना चाहिए। मुझे शुरू में भी लगता था, मान लीजिए कि मेरे कॉलोनी में एक बना हुआ है, एक बूथ है, कॉलोनी वालों ने इसमें वोट डाल दिए और उसमें पता लगा कि 1,000 लोग थे, उसमें कांग्रेस को केवल 50 वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी को 950 वोट मिले हैं, और टोटल सरकार बन गई कांग्रेस की, तो कहेगी कि अरे हमको तो 50 ही मिले थे, अच्छा यहां के सारे लोग तो बीजेपी वाले हैं तो हमारे लिए कुछ काम नहीं करेगी, तो उसमें गोपनीयता भी भंग होती है। तो ये बहुत अच्छा चुनावी सुधार की दिशा में उठाया गया कदम है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे तथ्य हैं यही आपकी सभी आपकी सतर्कता को शो करते हैं कि मान लीजिए चुनावी सुधार से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया तो आप लेटेस्ट चीज कितनी ला पा रहे हैं, तो ये सतर्कता आपको रखनी होगी। और मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने लेवल पर ये सतर्कता बरतूं और आप लोगों को प्रोवाइड करूं। मित्रों, दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज और हैं। एक टाइम्स ऑफ इंडिया का है, जो खासकर जो करप्शन, एंटी करप्शन जो बिल, क्या कहते हैं, जो लॉ है, वो सिविल सर्वेंट को उसको लेकर क्या उसके ओपिनियन है, उस पर एक लेख है, प्रशासन से जुड़ा हुआ है और सिविल सर्विस पर एक क्वेश्चन आता ही है। अच्छा आर्टिकल है, आईएएस ऑफिसर के द्वारा ही लिखा गया है, तो इसको जरूर देखिएगा। और इसी तरह से मनीष सबरवाल जी का इंडियन एक्सप्रेस के में एक आर्टिकल छपा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारे देश को अब ब्यूरोक्रेट्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, जर्नलिस्ट की जरूरत है, स्पेशलिस्ट की जरूरत है। आप स्पेशलिस्ट वर्सेज जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेटिक वर्सेज स्पेशलिस्ट, इस तरह के अक्सर डिबेट सुनते हैं, तो उसमें भी आपकी मदद ये आर्टिकल कर सकता है। तो दोस्तों, दूसरे आर्टिकल से वो आप देख लीजिएगा। अब मैं आता हूं आपके लाइफ मैनेजमेंट पर, और फिर से उसके लिए समय कम रह गया है, लेकिन कोई बात नहीं। दोस्तों, कल मुझे एक बड़ा खूबसूरत मेल मिला, और मेल में रात में देखता हूं, और उस मेल में मुझे एक बड़ी अच्छी सूचना मिली। सूचना ये मिली कि उसकी पहली लाइन थी, मेरे स्टूडेंट का मेल था, कि सर मैं आज बहुत खुश हूं। अच्छा लगा कि चलिए, खुशी की बात तो खुशी पहुंचाती है, एक की खुशी दूसरे की खुशी बनती है। अगर मैं आपसे ये कहूं मित्रों कि आपका दोस्त बहुत खुश है या मैं बहुत खुश हूं, तो आप एक अनुमान लगाते हैं कि यार इस खुशी का कारण क्या हो सकता है। तो अगर एक स्टूडेंट कह रहा है कि मैं खुश हूं, तो आप अनुमान लगाइए कि उसकी खुशी के कारण क्या हो सकते हैं। तो मेरे दिमाग ने भी तुरंत सोचना शुरू किया कि हो सकता है कि किसी एग्जाम का रिजल्ट आ गया हो और अच्छा रिजल्ट हो, या कोई नौकरी ही मिल गई हो, वो स्टूडेंट हो सकता है नौकरी की तलाश में हो और मिल गई हो तो उसकी खुशी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि नौकरी ऑलरेडी कर रहा हो तो कुछ प्रमोशन हो गया हो इसकी खुशी हो, या बहुत लोगों को इसमें भी खुशी मिल जाती है कि शादी पक्की हो गई, जिससे पसंद की शादी करना चाह रहे थे उसी से शादी पक्की, तो खुशी के इस तरह के कारण हम लोग ढूंढते हैं, है ना, कुछ ना कुछ उपलब्धि से जोड़ लेते हैं, जो हम चाह रहे थे वो हमें मिल गया तो हम खुश हो गए, अगर हम इसको सैद्धांतिक रूप से कहें। लेकिन आगे जब मैंने पढ़ा तो उस खुशी का कारण बिल्कुल ही अजूबा था, अलग ही था। और मालूम है वो खुशी का कारण क्या था? खुशी का कारण यह था कि सर मैंने ऐसे लिख लिया है, और आप लोगों को पता होगा कि कल के मैंने आडियो में आप लोगों से कहा था कि जो मांझी जो उड़ीसा की घटना थी संवेदनशीलता को लेकर के, कि उस पर कोशिश कीजिए कि आप लोग ऐसे लिखें, है ना, प्रशासन की संवेदनशीलता, व्यक्ति की संवेदनशीलता, समाज की। तो मैंने कुछ आप लोगों को पॉइंट्स दिए थे, तो मैंने वो ऐसे लिख लिया। इसका मतलब है कि जो खुशी का कारण था वो ऐसे को लिख लेना था। मित्रों, ये बहुत अद्भुत बात थी। देखिए, बहुत सामान्य सी बात लग रही है आपको ऐसे ऊपरी तौर पर सोचने से, और अगर ये बहुत ही सामान्य सी बात होती तो मैं उसे लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत उसकी चर्चा नहीं करता। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या काम को कर लेना, जो काम मुझे करना चाहिए उसे कर लेना मेरे लिए खुशी का कारण बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे डेली ऑडियो गाइडेंस रिकॉर्ड करना है, पहले मुझे उसकी तैयारी करनी होती है, फिर मुझे उसे रिकॉर्ड करना होता है, और रिकॉर्ड करने के बाद मुझे डेली एक अलग तरह की खुशी का एहसास होता है, और वो खुशी इस बात से जुड़ी होती है कि मुझे जो काम करना था वो मैंने कर लिया। और यदि वो काम बहुत अच्छे से हो जाता है तो उस खुशी की डिग्री बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और अगर ठीक से नहीं हो पाता तो सच पूछे तो थोड़ा सा दुख भी होता है कि यार ठीक से हो नहीं पाया। यानी कि क्या खुशी काम के करने में छुपी हुई है, या जिस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं उस उद्देश्य को पाने में छुपी हुई है? मित्रों, बस यही अंतर है, और यह बहुत बड़ा अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर है। हजारों में शायद एक आधी व्यक्ति ऐसे होंगे जो काम करने में खुशी का अनुभव करते हों, काम करने में, काम करने के बाद जो मिलता है उससे तो खुशी सभी को मिलती है, लेकिन काम करने में खुशी बहुत कम लोगों को, रेयर लोगों को मिलती है। और मुझे लगता है मित्रों कि ये वो रेयर लोग ही वो होते हैं जो सही मायने में जिंदगी में बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी हासिल करते हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिंदगी को जीते भी हैं। मित्रों, जरा सा सोच करके देखिए कि यदि हमें काम करने में खुशी मिलने लगे तो हमारी जिंदगी का स्वरूप क्या होगा। जरा सोच करके देखिए, हम एक दिन में पता नहीं कितने काम करते हैं। सुबह सोकर उठते हैं, ब्रश करते हैं, पता नहीं अनमने भाव से करते हैं, यार ये कहां का बवाल आ गया। इसके बाद मान लीजिए कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो घड़ी देख देख करके कर रहे हैं, यार कि ये 15, 20, 25 मिनट आधे घंटे का ये भी एक बवाल ही है, चलो इसको ये भी टला, ये भी हुआ। मतलब एक तरह से जैसे कि एक ऐसा बोझ हमने अपने कंधों पर रख रखा हो, टस 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 करके कदम दर कदम आगे बढ़ा करके उस बोझ को हम उसके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। पहुंचा तो रहे ही हैं क्योंकि पहुंचाना मजबूरी है, लेकिन अनमने भाव से, दुखी मन से, भारी मन से। सच पूछे तो यही हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी को, के द्वारा जिंदगी को जीने का तरीका भी है। जो भी काम मैं डेली कर रहा हूं, कोई भी कर रहा है, कोई झाड़ू लगाने वाला है तो यार चलो इतना हिस्सा लग गया, आज का काम तो पूरा हुआ, खाना बनाना है तो हे भगवान चलो आज का टिफिन तैयार हुआ, आज का काम पूरा। लगभग हर तरह के काम में हम इसी तरह के अनमनेपन का रुझान रखते हैं। अब इसको आप उलट दीजिए, दिन तो बीत जाता है और दिन दिन करके जिंदगी भी बीत जाती है, ये तो एक तरीका हुआ बीतने का, और दूसरा यह है मित्रों कि आपको काम करने में खुशी महसूस हो रही, तो याद रखिए केवल काम करने में ही खुशी महसूस नहीं हो रही है, काम को शुरू करने की भी खुशी महसूस हो रही है। जब आप अपने किसी दोस्त से, प्रिय दोस्त से मिलने जाते हैं तो मिलने पर ही खुश होते हैं या मिलने के बारे में सोच करके ही खुश होने लगते हैं? सोच के देखिए। आज आपने प्रोग्राम बनाया है कि आज यार दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाएंगे और इसके बाद रेस्टोरेंट जाएंगे और वहां अच्छे से डिनर करेंगे और फिर घर जाएंगे, तो ये सोच ही आप में एक अलग किस्म की ऊर्जा पैदा कर देती है, एक खुशी का भाव पैदा कर देती है। और अगर काम के करने से पहले ही आपके अंदर वो ऊर्जा पैदा हो गई जो होती ही है, अब मेरा अगला सवाल है कि फिर आपका वो काम कैसा होगा, मतलब क्वालिटी कैसे होगी उस काम की करने की। आपको नहीं लगता कि अगर आपका मन खुश है तो आप दोस्तों से बड़ी गर्मजोशी से मिलेंगे, गर्दन लटका के थोड़ी मिलेंगे, यार कैसे हो तुम, मैं तो ठीक हूं, तुम बताओ तुम कैसे हो। आप इतने गर्मजोशी से मिलेंगे कि हाथ मिलाते समय उसके हाथ को इतना झटका देंगे कि वो कहेंगे कि भैया हाथ तोड़ेगा क्या। आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाएगी। और जब आप उससे एकदम आर्मी की मैन की तरह हाथ मिलाएंगे तो आप हाथ मिलाने के दौरान उसमें भी ऊर्जा का संचार कर देंगे। अगर उसकी लटकी हुई गर्दन है तो आप देखिए कि बिल्कुल कड़कदार हो जाएगी। ऊर्जा अगर आप में है तो आप दूसरों में भी ऊर्जा का संचार कर देंगे, और अगर आप खुश हैं तो आप दूसरों को भी खुश कर देंगे। तो मित्रों, ये छोटी सी बात नहीं है कि मैं आज खुश हूं क्योंकि मैंने उस एसे को लिख दिया। इसके पीछे जीवन का कितना गहरा दर्शन शास्त्र छिपा हुआ है, कितना जबरदस्त मनोविज्ञान है, जीवन को कितने खूबसूरत और अच्छे तरीके से जीने की कला है, सोच करके देखिए। और बात छोटी सी है, इतनी छोटी सी है कि जिसको बड़ी आसानी से इग्नोर भी किया जा सकता है कि भैया ठीक हो, खुश हो तो खुश हो। लेकिन मित्रों, मुझे लगता है कि हम हर काम के साथ ऐसा नहीं कर पाते, और जिस दिन हम हर काम के साथ ऐसा करने लगेंगे, ज्यादातर काम के साथ करने लगेंगे, जिंदगी इसी तरह की खुशियों का सिलसिला बन जाएगा, एक काफिला बन जाएगा, और फिर आप देखिए कि आपके पास किस तरह से उपलब्धियों के मेडल आपके कंधे पर आने लगते, कंधे के उसमें लटकने लगते हैं, जैसे आर्मी मैन के कंधे पर लटकते हैं ना जो मेडल्स लटकते रहते हैं, आपके भी कंधों पर लटकने लगेंगे वो चमकीले मेडल, जो आपके लिए तो बड़े आसान सी मालूम पड़ रही होंगी और दूसरों के लिए वो बहुत ही असंभव मालूम होगा। मित्रों, असंभव है नहीं। अब आप देखिए कि जब आप सिविल सर्विस के लिए पढ़ाई करते हैं तो आपके मन की स्थिति क्या रहती है। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में इतना ही। अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। तो सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और इसी में से मित्रों कुछ दोस्तों के नाम हैं, कीर्ति गुप्ता इलाहाबाद से, इंद्रजीत कुमार महतो पश्चिम चंपारण बिहार से, सीमंत हरिव्यासी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, अच्छेलाल चौहान उत्तर प्रदेश से, विवेक, बलविंदर गिल, शुभम जैन और सागर पंसारी, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मित्रों अच्छे लाल चौहान के प्रति मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में लगभग 45 दोस्तों को बताया है और वो सब बड़े रेगुलर सुन रहे हैं और बड़े खुश हैं। तो अच्छे लाल, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और मित्रों, अब एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने उस स्टूडेंट को जिसने ये मेल भेजकर मुझे एक विषय उपलब्ध कराया कि सर आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने ऐसे लिख लिया है। ईश्वर करे, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये चेतना लगातार उनकी बढ़ती रहे और इस लाइफ मैनेजमेंट के माध्यम से आप सब तक उस चेतना का प्रसार हो। तो मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करते हैं। इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।